समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, टू ऑल आवर लिसनर्स अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड आकर्षिता टुडे, एंड वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, reports, capsules and also business news and tributes at the end of the program, as we always tell you about the personalities. And all of this over the next 30 minutes. First, we are beginning with the news headlines.
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के विशेष मुद्दों पर भारत के विचार रखेंगे।
President Draupadi Murmu calls for harnessing skills and strengths of people for nation's development.
उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों ने श्रम संहिताओं को सराहा और कहा कि ये संहिताएं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक।
दिल्ली पुलिस बस इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकर्स रैकेट ऑपरेटेड बाय पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI अरेस्ट 4 सस्पेक्ट्स।
केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया।
And now we will be taking a look at the national or global level, the developments taking place at the national or global level. And this is our segment, Dateline India. We will talk about the rollout of the country's 4 new labor codes. And we are also talking about the policies shaping India's progress. We explore a major shift in India's employment landscape, which is the rollout of the country's 4 new labor codes. This move has been widely welcomed by industry bodies and consulting firms across the nation, with many calling it historic and transformative. But what exactly does it mean for businesses, workers and the economy? Let's unpack it.
एक समय भारत की श्रम कानून एक भूल भुलैया की तरह थे, 40 से अधिक केंद्रीय कानून और 100 से ज्यादा राज्य स्तरीय विविधताएं। समय के साथ नियोक्ताओं के लिए इन्हें समझना मुश्किल और कर्मचारियों के लिए उलझन भरा होता गया। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इन्हें 4 संहिताओं में समेकित किया है। मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता।
एंड टूगेदर दीज कोड्स एम टू सिंप्लीफाई, टू मॉडर्नाइज एंड टू स्ट्रीमलाइन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। Industry leaders, they have responded with optimism. Major business associations have labeled the move a long-awaited step toward creating a future-ready workforce. The president of the National Front of Indian Trade Unions, Dr. Deepak Jaiswal, said around 50 crore people are working in the unorganized sector and their minimum wage will now be fully ensured with the implementation of the new labor codes.
जो हमारी मांगे 100 साल में भी नहीं हो पाई और विश्व स्तर के जो मापदंड होने थे वो, उसके लिए ये नींव का पत्थर का काम करेगा। मैं और कंसेंट के 14 श्रमिक संगठनों की ओर से मैं NFI2 का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनसुख मंडाविया को, श्रमिकों को और उनके परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे आधी से अधिक जनता लाभान्वित होगी।
भारतीय मजदूर संघ BMS ने 4 नए श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया है। BMS के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि ये फैसला आजादी के बाद से श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा सुधार है।
भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे पुराने थे, आज काम की दुनिया बदल रही है, तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहां से उसके लिए प्रावधान आएंगे, इन कोर्ट्स में उनका सबका समाधान है।
चंडीगढ़ में श्रमिकों ने नए श्रम संहिताओं का स्वागत करते हुए कहा है कि ये कानून श्रमिकों के हित में है।
श्रम कानून 4 जो लागू किए हैं वो सरकार ने बड़े अच्छे किए हैं, वो लेबर के हित के लिए हैं। ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी एमआरएम कर्मचारी संगठन जोनल सचिव राजकुमार सिंह चंडीगढ़, मैं इसके लिए सहमत हूँ। और जो ग्रेजुटी है और वर्करों को मिलेगी अपॉइंटमेंट लेटर ठेकेदार इशू करेगा, और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत अच्छा किया गया है।
So, the government announced the implementation of 4 new labor codes that seek to simplify and streamline the existing decades-old laws in the country. The Ministry of Labor said that the new labor codes will ensure better wages, safety, social security and welfare for the country's workforce.
ये श्रम संहिताएं अनुपालन को बहुत आसान बनाती हैं। पहले व्यवसायियों को दर्जनों रजिस्टर रखने और कई रिपोर्ट दाखिल करने पड़ते थे, अब सब कुछ सरल और डिजिटल हो गया है। नियोक्ताओं के लिए इसका अर्थ है कम प्रशासनिक लागत और मुख्य कार्यों पर अधिक ध्यान। श्रमिकों के लिए ये पारदर्शिता और सुसंगत प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।
The new codes will help boost formal job creation. Industry bodies believe that, especially in manufacturing, services and the fast-growing gig economy, perhaps the biggest winners are workers, of course, especially those in unorganized sectors.
शायद मैं सबसे पहले मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो उनके नियम है। जैसा कि एक नियम है कि हफ्ते में हम 48 घंटे काम करते हैं, 6 दिन करते हैं 8-8 घंटे करके, एक दिन हम ऑफ लेते हैं, तो उसमें ये नियम किया गया है कि हम 12-12 घंटे करके 4 दिन काम कर सकते हैं, 3 दिन रेस्ट भी ले सकते हैं, और यदि उन 3 दिनों में हम काम करेंगे तो हमें उसका ओवर टाइम दिया जाएगा। दूसरा नियम ये हुआ है कि जो हर साल जैसे हम कंपनी को छोड़ते थे तो हमें कोई फायदा उससे नहीं होता था, 5 साल यदि हम 3 साल करेंगे तो उसे कंपनी से हम ग्रेजुएटी हमें प्राप्त होती थी, लेकिन अब नियम सरकार का जो हुआ है यदि हम कोई कंपनी में 1 साल के बाद रिजाइन देते हैं, कंपनी छोड़ के 1 साल के बाद जाते हैं, तो हमें हर साल उसका वो मिल सकता है,
ग्रेजुएटी
केवल हो जाते हैं। और तीसरा नियम लेडीज संबंधित है, जैसा कि अभी हम ए शिफ्ट और जनरल शिफ्ट लेडीज से करा सकते थे, अब हम ए और बी दोनों शिफ्ट उनसे हम करा सकते
हैं। नया कानून लागू हुआ है जिसमें पहले से नए कानून जोड़े गए हैं, है ना, इसमें आप लोगों को मेडिकल सुविधा साल में एक बार कंपनी कराएगी, इसमें आप लोगों को पहले से होता था और नए कानून में वो भी प्रावधान दिया जा रहा है। और दूसरा मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट का एक रेट तय किया गया है जो मिनिमम मजदूरी दर है, उससे कोई भी कम पैसा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है।
Well, we were listening to a few of workers who are working in different fields and they were telling how they feel about the 4 new labor codes. The Social Security Code, for example, expands benefits like Provident Fund, pension, health insurance, maternity benefits, disability coverage as well.
आज भी लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और नई श्रम संहिताओं के लागू होने से अब उनका न्यूनतम वेतन पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएगा। महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े पुराने कानूनों को कई आधुनिक प्रावधानों के साथ अपडेट किया गया है। इससे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और निश्चित अवधि के कर्मचारियों सहित व्यापक समूहों को लाभ मिलेगा। पहली बार उन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा लाभ सुलभ होने से कामगारों को स्थिरता मिलती है। चूंकि उनका वेतन निश्चित नहीं होता, इसलिए बीमा और पेंशन बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं और ये उन लाखों गिग वर्कर्स की भावनाओं को दर्शाता है जो अब एक मजबूत सुरक्षा जाल के अंतर्गत आएंगे। और शगुन, अगर हम बात करें तो ये जो है, जो लेबर लॉज हैं ये सारे, ये असंगठित क्षेत्र में जो काम करते थे पहले मजदूर, ना उनके घंटे तय थे, ना उनका एक न्यूनतम वेतन तय था, अब उनको मिलेगा और वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका वेतन भी समान होगा।
एंड अनदर इम्पोर्टेंट रिफॉर्म इज द फोकस ऑन वर्क प्लेस सेफ्टी। आकर्षिता, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, दिस मर्जेस 13 लॉज इंटू 1 यूनिफाइड फ्रेमवर्क। दिस विल मीन working hours regulation, safety standards, sanitation and other facilities, health checkups, protection for women and migrant workers as well. These changes are seen as crucial, especially as India positions itself as a global manufacturing hub.
और शगुन, हालांकि इसका स्वागत काफी हद तक सकारात्मक रहा है, सभी उद्योगों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, नियोक्ताओं और श्रम विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो नए लेबर लॉज हैं, अगर इनकी बात करें तो जो छोटे व्यवसाय हैं, अगर उनको अपने सारे कर्मचारियों पर ये लागू करना पड़ेगा और डिजिटल तैयारी की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होना, उसके लिए एक तैयारी करनी पड़ेगी सरकार को पहले से, और पुराने नियमों से नए नियमों में सुगम परिवर्तन और श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, ये बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो श्रमिक है वो खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो उनका शोषण होता रहता है, तो सबसे पहले तो उन्हें जागरूक करना बड़ी आवश्यकता है आज की।
Yes, awareness is what is required here. And despite these challenges, consulting firms predict that long-term, there are long-term gains. According to labor analysts, these codes, they can significantly improve ease of doing business, making India more attractive to investors. And in the bigger picture, as a whole, the labor codes aim to create a stronger, a fairer and more productive economy. And experts, let's find out what they believe. Well, formalization of the workforce will rise, social protection will deepen, formalization of the workforce will rise, business operations will become smoother, worker rights will be clearer, labor disputes, they may reduce, and new job creation will accelerate.
जी हाँ, भारत एक ऐसे भविष्य के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है, जहां आर्थिक विकास और श्रमिक कल्याण एक साथ आगे बढ़ सके। इससे श्रमिक सशक्त होंगे और अनुपालन आसान होगा। जैसे जैसे भारत इन ऐतिहासिक सुधारों के साथ आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही काम की एक अधिक संतुलित, पारदर्शी और प्रगतिशील दुनिया का अनुभव करेंगे। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी गोवा के पणजी में उल्लास और उमंग के बीच उत्साह से भरपूर युवा भीड़ के साथ मनाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा फिल्म समारोह इन दिनों सितारों की जगमगाहट से सराबोर है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
एशिया के इस सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव का आज तीसरा दिन है। सुबह से ही फिल्मों की लगातार स्क्रीनिंग, मास्टर क्लास और एक के बाद एक इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। इफ्फी 2025 इस बार वरिष्ठ फिल्मी हस्तियों और उभरते कलाकारों के साथ विशेष संवाद तथा मीडिया इंटरेक्शन के जरिए सिने प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। एक मास्टर क्लास में जाने माने फिल्मकार विधि विनोद चोपड़ा ने जीवन, सिनेमा और कहानी कहने की कला पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी से जुड़े दिलचस्प अनुभव साझा किए। 1942 लव स्टोरी के 8 के रेस्टोरेशन लेकर एक युवा और संघर्षरत फिल्मकार के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने तक की यात्रा को उन्होंने बड़े ही आत्मीय अंदाज में बयान किया। इसी क्रम में आज पेस्कादोर फिल्म की टीम, निर्देशक हैरी डोमिनिको रॉसी, निर्माता आइजैक जोसेफ बैंक्स और बारबरा एनी रसेल ने भी अपने अनुभव साझा किए। आकाशवाणी समाचार के एक सवाल पर फिल्म के निर्माण के दौरान आई चुनौतियों पर बात करते हुए निर्देशक रॉसी ने बताया कि पेस्कादोर उनके निजी जीवन की गहरी अनुभूतियों से प्रेरित है और इसे बनाना कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण रहा। कोस्टारिका में फिल्माई गई ये फिल्म उस क्षेत्र की संस्कृति और भावनाओं को अत्यंत प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है। अपनी प्रभावशाली कहानी और दमदार अभिनय के कारण ये फिल्म वैश्विक स्तर पर सराहना बटोर रही है। इसके बाद वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट पर अनुभव साझा किए। आकाशवाणी समाचार के एक प्रश्न के उत्तर में श्री खेर ने बताया कि ये फिल्म कभी हार ना मानने के आदर्श वाक्य से प्रेरित है, जिसने हमेशा उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को दिशा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कहानी उनके जीवन के अनुभव और आसपास के लोगों से जुड़ी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें ऑटिज्म से जूझ रही एक लड़की के सपनों की उड़ान को बेहद संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद मॉस्किटोज फिल्म की निर्देशक वालंटीना बर्तानी और निकोल बर्तानी ने फिल्म के विषय और निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह फिल्म एक संवेदनशील, भावनात्मक और गहन विषय को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत करती है और इसी वजह से इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विशेष सराहना मिली है। मानव संबंधों, संघर्षों और जीवन की पेचीदगियों के बीच में उम्मीद की तलाश ये फिल्म इन्हीं भावनात्मक पहलुओं को शांत लेकिन गहरे प्रभाव के साथ दर्शाती है। अंत में आपको बता दें कि फिल्मोत्सव में आज लगभग 50 प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे यह दिन दर्शकों के लिए बेहद खास बन गया है। परिक्रमा के लिए आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
Now, from Johannesburg, South Africa, we bring you the inspiring story of Sri Radhesham Mandir, a temple that reflects 32 years of faith, unity and community effort. The Santon Hindu Samaj built the Sri Radhesham Mandir in Marlborough Gardens, Johannesburg in 1994. Since then, it has been a beacon of faith, culture and community service. And let's find out how in our report.
Sri Radhesham Mandir stands today as a testament to devotion, unity and a quiet strength of community spirit. What began more than three decades ago as a shared dream among 15 families has evolved into a vibrant spiritual and cultural hub, one that continues to enrich the lives of generations. At the heart of the complex lies the Sanatan Temple, a serene sanctum where idols of all major deities are placed with great reverence. Kirat Acharya of Sri Radhesham Mandir shares on the significance and uniqueness of the Mandir.
This is around 32-year-old temple. The around 15 family founder members of this temple that came together. They used to do the satsang and all in a nearest temple place here. Their satsang every weekend meet and all. And then they thought, let me have something for our children. And that how they come up with concept of Sri Radhesham Mandir. And now this July, we are reached to 32 years of the Sri Radhesham Mandir. We have the school, we have the community hall and the temple here, which is the Sanatan temple. If you can see here that the Uda Bhagwan Murti is placed.
Festival, daily artists, bhajans, satsang sessions infuse the temples with an atmosphere of spiritual warmth, carrying forward the founding family's vision of living breathing center of devotion. Over the years, Sri Radhesham Mandir has expanded its role far beyond worship. The campus today includes a community hall which hosts cultural programs, yoga sessions, religious discourses, social gatherings and charity initiatives. For Parikrama, Asunyo, Johannesburg.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल और विकसित भारत की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर उत्तर बंगाल के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेला 2.0 का आयोजन सिलीगुड़ी में विगत 15 और 16 नवंबर को हुआ। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कौशल विकास व विकसित भारत की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर भाजपा के राज्यसभा सांसद तथा पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के नेतृत्व में उनके गैर सरकारी संस्था दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी के आयोजन तथा केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से विगत 15 व 16 नवम्बर को सिलीगुड़ी में एक मेगा रोजगार मेला 2.0 का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल तथा पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने किया एवं समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्य के राज्यपाल डॉ. सीबी आनंद बोस उपस्थित थे। देश के निजी क्षेत्र के 60 से अधिक प्रमुख कंपनियों ने इस दो दिवसीय मेले में 2500 से अधिक क्षेत्र के युवा युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मेले में रोजगार पाने के लिए करीब 6000 से अधिक युवा युवती ने पंजीकरण कराया था जिसमें 2500 से अधिक को नौकरी मिला। उत्तर बंगाल के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है। उत्तर बंगाल में रोजगार के उद्देश्य से आयोजित यह सबसे बड़ा मेला था। मेले के उद्देश्य के बारे में सोसाइटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि
स्किलिंग बहुत जरूरी है, आप जरूर इसका फायदा लें क्योंकि हमारे सरकार की तरफ से बहुत ऐसे स्कीम्स हैं जो हमारे युवाओं को सपोर्ट करती है। तो ट्रेनिंग वगैरह करके आपका मतलब जो वैल्यू है बढ़ाना चाहिए और ये है हमारे चुनौती कि एक मतलब 10 लाख लोग हमारे युवाओं हर महीने जॉब मार्केट में आते हैं, उनको कैसे ट्रेन करें, उनको कैसे स्किल करें, उनको कैसे 21st सेंचुरी में एम्प्लॉयबल बनाएं ताकि इनको अच्छे जॉब मिले, अच्छे ऑप्शंस मिले और जॉब भी नहीं इनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनाएं।
इस मेले में रोजगार पाने वाले एक युवती ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा,
माय नेम इज निशा रॉय, मैं लीचूपाकरी से आई हूं, तो यहां पे रोजगार मेला में आके बहुत अच्छा लगा। इवन की मैंने जहां पे अप्लाई किया था दिव्या की कंपनी में, तो यहां पे मैं सिलेक्ट हो गया, मैं बहुत हैप्पी हूं।
राज्यपाल श्री आनंद बोस ने उत्तर बंगाल के युवाओं के लिए इसे एक सार्थक कदम बताया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कार्शियांग।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
इन मेंस क्रिकेट South Africa were 247 for the loss of 6 wickets in their first innings against India on day 1 in the second and final test at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati when stumps were drawn this evening. Earlier, South Africa won the toss and then opted to bat first.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember Jhalkari Bai, who was born on the 22nd of November 1830. An advisor and confidant to the legendary Rani Lakshmibai, she played a key role in the battle formations alongside Lakshmibai and emerged as a prominent fighter during the First War of Indian Independence in 1857. Rani Lakshmibai spotted Jhalkari during a festival celebration in Jhansi Fort and was surprised by the uncanny resemblance Jhalkari shared with her. When the Queen was briefed on Jhalkari's brave acts, she was quickly inducted into the women's wing of the army. In 1858, when British Field Marshal Hugh Henry Rose attacked Jhansi, Rani Lakshmibai took on the British forces from her fort with just an army of 4,000. However, she was betrayed by one of her own commanders, thus making defeat imminent.
Counseled by her generals, Lakshmibai quietly slipped away from Jhansi on horseback. Jhalkari Bai set out for General Rose's camp in disguise and declared herself to be the queen. This led to a confusion that continued for a whole day and gave Lakshmibai enough time to escape. Jhalkari Bai died on 4th April 1858 while defending her queen and fighting for her motherland.
We salute her indomitable spirit.
Today, we also commemorate the birth anniversary of Indian nationalist Shanti Ghosh, who was born on 22nd of November 1916 in Kolkata, West Bengal.
Ghosh was a founder member of the Chhatri Sangha in Komila and joined the militant revolutionary organization Jugantar Party. On the 14th of December 1931, Ghosh and Suniti Chaudhary, both 16 years old at that time, walked into the office of Charles Jeffrey Buckland Stevens, the district magistrate of Komila, under the pretense that they wanted to present candies and chocolates to the magistrate prior to Christmas.
While Stevens ate the candy and said, "These are delicious," Ghosh and Chaudhary removed automatic pistols which were hidden under their shawls and said, "Well, how about this one, Mr. Magistrate?" and shot him.
The two girls were sentenced to transportation for life and sent to Hijli detention camp, Kharagpur. However, in 1939, after having served 7 years of sentence, they were released because of the amnesty negotiations between Mahatma Gandhi and the British government.
After her release, Ghosh attended the Bengali Women's College and joined politics. She served on the West Bengal Legislative Council from 1952 to 62 and 1967 to 68 and on the West Bengal Legislative Assembly from 1962 to 64. She continued to work for the betterment of India till her death in 1989. We salute the great Indian patriot.
आज भारतीय सेना की वीर सैनिक अधिकारी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की जयंती है। उन्हें लोंगावाला के प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है। उन्होंने लोंगावाला के युद्ध में भारतीय सेना का वीरता के साथ नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मान किया गया था। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में राजस्थान के लोंगावाला मोर्चे पर हुई लड़ाई का उन्हें हीरो माना जाता है। इस लड़ाई में कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगावाला पोस्ट पर तैनात थे। सीमा पर पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट थी और चांदपुरी की कमांड में सिर्फ 120 जवान थे। भारतीय फौज में शानदार सेवाओं के लिए उन्हें महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथियों की लोंगावाला मोर्चे पर दिखाई बहादुरी पर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर भी बनाई गई।
Well, today we are remembering classical music stalwart Ustad Imrat Khan, dedicated his life to propagating the sitar and surbahar worldwide. Well, mention the name Ustad Imrat Khan to any young Indian classical music lover and chances are the reply will be Imrat Khan Sahib. And he was one of the finest instrumentalists of his time, innovator, composer, great teacher and inheritor of Surbahar playing tradition of the 5 generation old Imdad Khani Gharana. आज प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान की जयंती है। उन्होंने अपने करियर में 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। 4 दशक के लंबे करियर में सरोज खान को 2000 से ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी करने का श्रेय हासिल है। संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में डोला रे डोला गाने की कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। Well, yes, Saroj Khan, the legendary choreographer and Bollywood's master G. So every era of Hindi films has a distinct song and dance style. And for those who grew up in the 1990s, this era was defined by the choreographed songs of Saroj Khan. माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के यादगार गीत 1, 2, 3 और साल 2007 में आई फिल्म जब वी मेट के गीत ये इश्क के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। Well, yes, Saroj Khan's dance steps were a part of the pop culture, and she was an inspiration and still is for all actors and choreographers. And it's also important to note here that Akarshita, she worked as a child actor in the movie Tarana.
और 1986 में आई फिल्म नगीना सरोज खान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में सरोज खान ने श्रीदेवी को मैं तेरी दुश्मन गाने पर डांस कराया, जो हिट हुआ और इसी गाने की वजह से सरोज को प्रसिद्धि भी मिली। सरोज खान ने आखिरी बार करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म कलंक में तबाह हो गए गाने को कोरियोग्राफ किया था। सरोज खान ने फिल्म तेजाब, खलनायक, मिस्टर इंडिया, चालबाज, नगीना जैसी फिल्मों के गानों को कोरियोग्राफ किया। आज भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुक्माबाई राउत की जयंती है। वे एक ऐतिहासिक कानूनी मामले के केंद्र में थी, जिसके परिणाम स्वरूप ईज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 नामक कानून बना था। रुक्माबाई को डॉक्टर बनने की इच्छा थी और वे लोगों की सेवा करना चाहती थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में पढ़ाई की। वहां से रुक्माबाई ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1895 में वापस भारत लौटी। रुक्माबाई ने सूरत के महिला अस्पताल को चुना। उन्होंने जीवन भर डॉक्टरी की और डॉक्टर रुक्माबाई एक सामाजिक सुधारक भी थी। उन्होंने महिला और बाल अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाई।
And listeners, we are also remembering Lawrence Milton Hart, lyricist and half of the Broadway songwriting team Rodgers and Hart. Some of his famous lyrics, they include Blue Moon, also Bewitched, Bothered and Bewildered. And the song that we have picked, this is Blue Moon.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Well, yes, we are also remembering Mary Ann Evans. Well, she's known by her pen name, George Eliot, the novelist, poet, and also a translator and a journalist. She wrote 7 novels, 2 of them being Adam Baird, The Mill on the Floor's the other one. Well, she emerged a very famous writer, and most of her works are set in provincial England. Her works are known for realism, psychological insight, and sense of place.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।